आज जो हम आपके लिए सब्जेक्ट लेके आए हैं साइंस एंड टेक, और बात करेंगे बायोलॉजी में. जी हाँ, और जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट. हम सबसे पहले आपको उनसे इंट्रोड्यूस करा देते हैं. हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है मिस नीलम गुप्ता, सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एकेडमिक डिपार्टमेंट NIOSH से. मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है. तो मैम, मैं जैसा कि आज हमारा बायो में हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन के ऊपर, यानी कि जनन, तो मैं चाहूंगी मैम आप चर्चा को शुरू करें.
थैंक यू रूपा. हम जैसे आपने बोला कि हम जनन पर बात करना चाहते हैं, रिप्रोडक्शन पर, तो पहले हम इसमें ना प्लांट्स का, एनिमल्स का और स्पेशली ह्यूमंस के बारे में भी बात करेंगे, और बहुत सारी चर्चा है इस लेसन से रिलेटेड. तो हम शुरुआत करते हैं चर्चा की. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के मुक्त विद्यावाणी कार्यक्रम में मैं नीलम गुप्ता आप सभी श्रोताओं और शिक्षार्थियों का स्वागत करती हूँ. आज का जो लाइव PCP है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, जो कि सेकेंडरी का कोर्स है NIOSH में, पर आधारित है. और आज हम मॉड्यूल 5 यानी लिविंग वर्ल्ड यानी सजीव जगत के लेसन नंबर 24 यानी जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं. तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम जब चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हमें मालूम है कि हमारा जो शरीर है वो विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना है, और कोशिकाओं से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गेन, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम बनते हैं, और इस तरह से हम शरीर की रचना होती है. और हमारे शरीर में बहुत तरह के तंत्र हैं, जैसे पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, अंतरस्रावी तंत्र हो गया, परिसंचरण तंत्र हो गया. उसी में हाँ एक और तंत्र शामिल करते हैं जो कि जनन तंत्र, वो भी उसी में से एक है हमारी ह्यूमन बॉडी में, मतलब किसी भी जीवधारी में. तो हमने जब पिछले प्रोग्राम में चर्चा की थी तब हमने लगभग सभी वाले अपने जितने कई प्रोग्राम में चर्चा कर चुके हैं, तो सभी तंत्रों के बारे में बात कर लिया है. और आज हम जो चर्चा करेंगे तो करेंगे यानी जनन यानी रिप्रोडक्शन की. तो हमें जैसे मालूम है कि एक ही परिवार की कई पीढ़ियां चलती आती हैं, देखते हैं कि दादा फिर बेटा, फिर उसके बाद में पोता, फिर उसका पर पोता, इस तरह से कई सारी पीढ़ियां हम देखते रहते हैं. और ये पीढ़ी से जब पीढ़ी अपने जैसे ही संतति को उत्पन्न करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग वंस ओन काइंड इंश्योर्स द कंटिन्यूएंस ऑफ द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट इनहेबिट द अर्थ. और जो रिप्रोडक्शन है वो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एवरी लिविंग बींग और हैज इट्स ओन रोल टू प्ले इन द बॉडी जस्ट लाइक द अदर बायोलॉजिकल प्रोसेस. जैसे सारे प्रोसेस हैं उसी तरह से जनन का भी एक अपना प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है. तो जैसे हमने बात कौन कौन से, जैसे हमने पहली बात की कि जनन से के अलावा हमारे शरीर में जो रेस्पिरेशन तंत्र है, सिस्टम है, सर्कुलेशन सिस्टम है, न्यूट्रिशन सिस्टम है, उसी तरह से. तो इस प्रोग्राम के दौरान हम बात करेंगे कि हाउ न्यू ऑर्गेनिजम्स जो रिप्रोड्यूस, वो कैसे ग्रो करते हैं, उनकी लाइफ कैसे होती है, और बिकम रेडी टू गिव राइज द अनादर जनरेशन ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स. और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म क्या कौन से हैं, और वी विल ऑल्सो डिस्कस टू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट and share some facts about reproduction in animals with a special emphasis on reproduction, that is human reproduction. पर बात करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अपनी चर्चा की जो शुरुआत करते हैं वो कहते हैं कि जनन यानी रिप्रोडक्शन की. जैसे आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि सभी अपनी लाइफ में हैं कि अपने पेरेंट्स से, रिलेटिव से हम सुनते हैं कि कैसे आप अपना पहला कदम लिया था जब आप छोटे थे. तो जैसे अगर कुत्ते को देखकर कैसे उसका, अगर कुत्ता भौंक रहा है तो आप कैसे डर जाते थे, या फिर और भी जानना चाहेंगे तो आप अपने पेरेंट्स से अपने बचपन के बारे में उनसे बात कीजिए, तो वो आपको बहुत सारी आपसे जुड़ी ऐसी बातें होंगी जिन्हें आपको तो याद नहीं होगा, लेकिन वो आपको याद करके वो उन एक्सपीरियंस को आपसे शेयर करें कर सकते हैं. आपने ये भी रियलाइज किया होगा कि जो नेचुरली अकरिंग फीचर्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इज टू ग्रो अप. माइक्रोब्स हो गए, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ऑल नीड टू ग्रो अप टू ए एक्सटेंट व्हेन दे आर एबल टू परपेटुएट देयर ओन स्पीशीज. तो इससे हम कह सकते हैं कि जो स्पीशीज हैं जो इस पृथ्वी पर रहती हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अपने जो जीन्स हैं उनको ट्रांसफर करती हैं, और बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द परपिटुएशन ऑफ स्पीशीज को ही हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो जब कोई ये जो स्पीशीज है वो क्या होती है, स्पीशीज होती है पौधे और जंतुओं का वो ऐसा समूह जिसके अंतर्गत वे परस्पर प्रजनन कर सकते हैं और एक विशिष्ट यानी एक नाम, एक स्पीशीज का एक विशिष्ट नाम होता है उसके नाम से, यानी वो नाम मोस्टली लैटिन में लिखा जाता है उसे पहचाने जाते हैं। तो एक स्पीशीज के सभी सदस्य एक समान दिखते हैं और एक जैसा ही व्यवहार करते हैं, क्योंकि इनके जीन्स एक से होते हैं इसीलिए इसको हम स्पीशीज कहते हैं। अगर हम एक उदाहरण ले लें कि ह्यूमन का ही उदाहरण लेते हैं, क्योंकि ह्यूमन का नाम है होमो सेपियंस, वैज्ञानिक नाम इसका मनुष्य का ये है, और चाहे एशियाई हो, अफ्रीकन हो, यूरोपियन हो, कहीं लैटिन अमेरिकी देश में रहने वाले अगर मानव हैं, वो सभी क्या हैं, एक ही जाति के प्रजाति के सदस्य हैं, जाति के यानी होमो सेपियंस ही हैं। तो अब हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, यानी जनन क्या होता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी जैव प्रक्रिया है जिसके रूप में जिसके द्वारा जो जीव हैं अपने जैसे जीवों को ही पैदा करते हैं, और ये दो तरह के हो सकते हैं, एसेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है सेक्सुअल यानी लैंगिक जनन। तो बैक्टीरिया और जो प्रोटोजोआ हैं वो एक ही तरह के एक ही से जीव से जो जीवन उत्पत्ति है, संतानोत्पत्ति है वो संभव है, तो इसीलिए हम उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जो दूसरे जंतु हैं, जो पौधे हैं, वो अलैंगिक जनन द्वारा भी प्रजनन जनन करते हैं। और ये अगर आप अपने बुक में देखेंगे तो फिगर नंबर 21.1 में आपको अमीबा का विभाजन दिखाया गया है, और 24.2 को अगर देखेंगे तो उसमें हमने ईस्ट का दिखाया है, और 24.3 की बात करें तो ईस्ट में और हाइड्रा में मुक्कलन यानी बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। तो जब हम बात करते हैं कि व्हेन टू इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन इट इज टर्म्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल गैमिट फ्यूजेस विद फीमेल गैमिट टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल। तो दिस इज मोर कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो पहले हम बात कर रहे हैं अलैंगिक जनन की। जैसे हमने बात की कि जो लोअर एनिमल हैं जैसे बैक्टीरिया हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, और कुछ जो एल्गी हैं, उनमें जो जनन है वो अनेक प्रकार से एकल जीव द्वारा ही संपन्न होता है, और पौधों में जो है ये जो अलैंगिक जनन है वो होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन के द्वारा। लेकिन कुछ एनिमल्स हैं जैसे स्पंज हो गया और हाइड्रा है, ये इसमें दोनों तरह के यानी सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही इसमें पाए जाते हैं। तो अरे हम बात कर रहे हैं जो लोअर एनिमल्स हैं उनमें किस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो पहले हमने बात करी द्विभाजन यानी बाइनरी फिशन, जिसका एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा का एक जो सेल है वो डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बनाता है, और जब ये दो डॉटर सेल जब बनती हैं तो जो पहली सेल है उसका अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है, और ये अमीबा और बैक्टीरिया दोनों में ही इस तरह से होता है। आप फिगर में देख सकते हो कि अमीबा का एक सेल से उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है दो में, और फिर उसके बाद में वो दो संतति कोशिकाओं में बदल जाता है। सेकेंड टाइप है हमारा इसमें बडिंग यानी मुकुलन। बडिंग में क्या होता है कि जो मदर सेल है उसके शरीर से एक बड निकलती है, और जो कि जो पेरेंट है उसके जुड़ी रहती है, और पेरेंट का जो न्यूक्लियस है वो लंबा होकर दो में विभाजित हो जाता है, जिसमें से कि जो दो में बट गया तो एक भाग जो है वो बड में चला जाता है, और इसका उदाहरण है हमारा ईस्ट। उसी तरह से जो मल्टी सेलुलर जीव का एग्जाम्पल हमने स्पंज या हाइड्रा लेते हैं, तो हाइड्रा जब हम ले रहे हैं तो शरीर के इनमें क्या होता है कि इसके शरीर के किसी भी भाग से एक बड निकल सकती है, और वे बड़ी होती है, और जब इसके शरीर का पूरा निर्माण हो जाता है तो ये जो बड है वो अपने पेरेंट से अलग हो जाती है, यानी कि वो अपनी एक अलग आइडेंटिटी में आ जाती है, और उस वो अलग एक बड हाइड्रा की बन जाती है, यानी वो एक अलग एक जीव उत्पन्न हो गया। अब हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन, जो कि एल्गी जैसे क्लेमाइडोमोनस हो गया, उसमें पाया जाता है. एग्जाम्पल हमने वो लिया है, इसमें आपको आपका फिगर देखेंगे 24.4, जिसमें कि क्लोमाइडोमोनस के जो स्पोर्स है वो कैसे फॉर्मेट हो रहे हैं, फॉर्मेशन उनका किस तरह से हो रहा है वो देख सकते हैं. यानी जो क्लेमाइडोमोनस है उसका जो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य है और न्यूक्लियस जो है विभाजित होता है, और विभाजित होकर उसमें 4 से 8 स्पोर्स बनते हैं. उसी तरह से आप फंजाई की बात कर लें, मॉस की बात करें, और फर्न में भी जब जनन की बात करते हैं तो उसके हेतु जनन के लिए स्पोर्स ही बनते हैं. और ये स्पोर्स जो हैं वो एक वो कोशिकाएं एकल कोशिकाएं होती हैं जो कि जनक पौधे से जो पेरेंट प्लांट है उससे निकलकर नई संतति में प्लांटलेट में परिवर्तित विकसित हो जाती हैं, बन जाती हैं. अब हम बात करते हैं पौधों में जो अलैंगिक जनन यानी वेजिटेटिव प्रोपागेशन या कायिक जनन किस तरह से होता है. तो प्रकृति में इसमें एक आपको चित्र दिखाया है 24.5, जिसमें बहुत सारे तरह के जनन प्राकृतिक कायिक जनन के कुछ चित्र बनाए गए हैं, उन्हें आप देख सकते हैं. इसमें जो प्रकृति में जो नए पौधों का जन्म किस तरह से हो सकता है, यानी किसी भी पौधे के कोई भी जो वेजिटेटिव पार्ट हैं जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्तियां हो गई, उनके द्वारा हो सकता है. और इसीलिए इस जनन को हम कायिक जनन कहते हैं. इसमें एक टेबल बनाया हुआ है, टेबल नंबर है 24.1, जिसमें कि कायिक जनन के प्रकार भी हैं उदाहरण एग्जाम्पल के थ्रू के साथ आप देख सकते हैं. तो नेचुरल विधि में कैसे होता है, ये दो तरह से हो सकता है, एक तो नेचुरल हो सकता है, दूसरा आर्टिफिशियल हो सकता है. नेचुरल में जड़ से हो सकता है, तने से हो सकता है, पत्तियों से हो सकता है. अब जड़ की हम बात करते हैं तो जड़ में ये हो सकता है जो टेप हमारी एडवेंटिशियस रूट है यानी अपस्थानिक जड़ें हैं. और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है शकरकंद और डहेलिया, जो कि आपका इस चित्र जो 24.5 में दिखाए गए हैं उसमें पहले दो चित्र वही हैं. उसी तरह से अगर हम तने की बात करते हैं तो तने में कई तरह से हो सकता है, जैसे ऊपरी भूस्तरी ये घास का हो सकता है इसका एग्जाम्पल, अधा भूस्तरी ये गुलदाउदी यानी क्रेसेंथियम का है. अगर शलकंद की बात करते हैं तो प्याज इसका एग्जाम्पल है. अगर कंद की बात करते हैं तो आलू, और प्रकंद की बात करते हैं यानी राइजोम की बात करते हैं तो हम अदरक का एग्जाम्पल इसमें लिया है. अगर पत्तियों की बात करें तो बायोफिल्म इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें कि एडवेंटिशियस बर्ड निकलती है. और इसका जो चित्र है वो आप इसमें देख सकते हैं कि पत्तियों के किनारे किनारे कुछ कलियाँ निकली हुई हैं. और आर्टिफिशियल वे में जब हम बात करते हैं तो उसमें कई तरह से हो सकता है, जैसे कलम के द्वारा, दाब कलम के द्वारा या रोपण के द्वारा. तो यानी कटिंग हो सक कटिंग है, लेयरिंग है, और आपका ग्राफ्टिंग के थ्रू वेजिटेटिव प्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है. जो नए पौधे हैं वो जड़ या तना या पत्तियों से निकल बनते हैं, ये हमने अब बात कर ली. या फिर जब तना एक कुछ दूरी पर बढ़ता है और फिर मिट्टी में प्रवेश कर जाता है, उसके बाद में क्या होता है कि वहाँ से भी जड़ निकल आती है और एक नया पौधा उससे तैयार हो जाता है. पौधों में आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी होता है यानी कृत्रिम कायिक जनन भी होता है. और इसके लिए मनुष्य ने कायिक जनन की प्राकृतिक विधियों से इंस्पिरेशन लेकर अनेक तरह से पौधों को विकसित करने की कृत्रिम विधियां भी तैयार की हैं. और इसके द्वारा क्या होता है कि जो किसान या पौध घर के जो मालिक हैं वो कृत्रिम विधियों द्वारा भी कई पौधों को वो बना लेते हैं. अब जैसे फिगर नंबर 24.6 में है, जैसे कटिंग का दिखाया है, क्या है कि एक शाखा को काट लेते हैं और उसे मिट्टी में लगा देते हैं, वहां से फिर जड़ें निकल आती हैं और फलस्वरूप क्या होता है नया पौधा बन जाता है. उसी तरह से दाव लगाकर कैसे कि पौधे की एक शाखा जो है जमीन की ओर झुका देते हैं और एक भाग को उसमें से जब झुक जाती है तो उसको मिट्टी में दबा देते हैं, और इस भाग को जब मिट्टी में जब चला गया उसमें से नई जड़ें निकल आती हैं और एक नया पौधा बन जाता है. उसी तरह से आप कलम उसके द्वारा कैसे कि तने तथा कलम के जो निचले कलम काटते हैं उसी के निचले भाग से एक तिरछा काट लगाते हैं और पौधे का जो स्टेम है उससे कलम की तरह काट कर प्रयोग करते हैं. और तने में जो एक क्षैतिज काट लगा देते हैं और कलम को स्टॉक में फंसा देते हैं और उसको टेप से बांध देते हैं। दोनों को जोड़ने से कभी कोई चोट लग जाती है, कुछ होता है, तो हम जोड़ने के लिए दो चीज़ों को टच बराबर करके एक साथ करके फिर उसको टेप लगा देते हैं। तो क्या होता है कि कुछ समय बाद में वो दोनों जोड़ मिल जाते हैं और एक नई हमारी पौध तैयार हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि जो अलैंगिक जनन की हैं वो कुछ दूसरी विधियाँ भी हैं, वो क्या हैं। जैसे टिश्यू, अगर हम लैब के प्रयोगशाला में अगर पौधे तैयार करते हैं तो उसमें हम जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं कि एक जीव से जो है ना टिश्यू कल्चर के द्वारा पौधे की जो कई सारी व्यवस्थियाँ उत्पन्न करते हैं। और जब एनिमल्स में भी ये है तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल आता है वो था डॉली नाम की जो भेड़ थी, जिसके बारे में आपको पता होगा कि वो क्लोनिंग द्वारा ही पैदा की गई थी, जो बिल्कुल हूबहू अपनी माँ के जैसी ही दिखती थी। ये कैसी थी इसको हम थोड़ा सा बाद में बात करते हैं कि किस तरह से वो क्लोनिंग किया गया था। तो हम पहले बात करते हैं माइक्रो प्रोपागेशन की, या कह सकते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन की। यानी जब रिसर्चर्स ने क्या किया कि जो टिश्यू कल्चर की जो टेक्निक है वो ईजाद कर ली, यानी उन्होंने डिस्कवरी की है, तो इसमें क्या करते हैं कि किसी भी पौधे की प्रत्येक जीवित सेल या कोई भाग को रोटी पॉइंटन यानी पूर्ण चक्रम पाते हैं कि उसी उस हिस्से को लेकर हम एक नया पौधा बना सकते हैं जिसमें कि नए पौधे को जन्म देने की क्षमता होती है। यानी इज कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इंटू अ कम्प्लीट ऑर्गेनिज्म और डिफ्रेंशिएटिंग इंटू एनी ऑफ इट्स सेल और टिश्यू। तो जब मतलब क्या किसी का सकैसे करते हैं इसमें कि किसी जीव की समस्त सेल जो है एक अकेली सेल जो होती है जो जाइगोट यानी युग्मज है उसी से बनती है। इसीलिए जो सभी कोशिकाएं हैं वो एक समान जीव में एक ही जो सभी जो कोशिकाएं हैं किसी जीव की उसमें एक समान जीन ही होते हैं। और ये जीन क्या है, जीन परिवर्धन विकास और समस्त जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जो हमने जब सेल का पढ़ा था तो उसमें हमने ये बात की थी। और अब हम आगे जब हेरिडिटी की बात करेंगे तो उसमें और ज़्यादा विस्तार से इस पर बात करेंगे। पादप के किसी अंग यानी कोई भी पार्ट ले लिया, जैसे गाजर का अगर एग्जांपल लें तो उसकी हमने रूट या लीफ से सेल्स को निकाल कर एक न्यूट्रिएंट मीडियम में हम उसको कल्चर करते हैं। और जो जब कल्चर करते हैं तो एक कोशिकाओं का जो अविभाजित अनडिफ्रेंशिएटेड एक पिंड मिल जाता है हमें, जिसे कि हम कैलस कहते हैं। और ये जो कैलस है वो ही नए प्लांटलेट्स यानी पादपों को जन्म देता है। जो टिश्यू कल्चर द्वारा जो नए पौधे बनते हैं उसी को हम सूक्ष्म प्रवर्धन यानी माइक्रो प्रोपागेशन कहते हैं। इसका चित्र आपको 24.7 में आप देख सकते हैं, इसके स्टेप किस तरह से एक पादप से जो कोशिका लेके उसका संवर्धन किया और एक नया पौधा उससे तैयार हुआ। अब हम बात करते हैं कि जैसे हमने बात की थी ना कि डॉली भेड़ थी वो क्लोनिंग के द्वारा हुई थी, तो क्लोनिंग कैसे की गई थी उसकी, उसके बारे में बात करते हैं। जो क्लोन है वो अपने जो पेरेंट है यानी जनक है उसकी आनुवंशिक नकल होती है। और डॉली जो भेड़ थी वो कैसे पैदा हुई थी, तो वो बिल्कुल देखने में अपनी माँ जैसी ही थी। वो कैसे संभव हुआ कि जो उसकी माँ के अडर यानी जो थन थे उसकी कोशिका में से केंद्रक को निकालकर एक सरोगेट मदर जो थी उसके अंड में डाल दिया गया था। लेकिन सरोगेट मदर के उसमें से एग में से जो न्यूक्लियस था उसको पहले ही निकाल दिया गया था। और इस तरह से जो डॉली का जो भ्रूण था उसे एक पूर्ण जीव जो है उसकी माँ ने उसको जीन प्रदान किए थे, क्योंकि उसके उसमें से उन्होंने अडर में से जो सेल न्यूक्लियस था केंद्रक था वो निकाला था और उसमें डाल दिया था। और उसने तो जीन प्रदान की और जो सरोगेट मदर थी उससे उसके गर्भ में उसका विकास हुआ था। यानी सरोगेट मदर क्या हो गई कि एक मादा जंतु जिसके गर्भ में उसी के जैसे दूसरी मादा का भ्रूण विकसित हो रहा है। और आजकल ये तकनीक सरोगेसी तो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अब हम बात करते हैं हमारे लैंगिक जनन के बारे में, पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्लांट्स में, तो उसमें भी हमें मेल और फीमेल गैमेट की ज़रूरत है और उनको दोनों का मिलना ज़रूरी होता है। तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स में ही संभव है। तो फ्लावरिंग प्लांट में ये किस तरह से होता है, क्योंकि हमको पता है कि जो किसी भी पौधे का जो फूल है, पुष्प है, वो ही पौधों का जनन अंग होता है। और उसमें आपको फिर जो चित्र है 24.9, उसमें एक टिपिकल फ्लावर की जो है एक ट्रांसवर्स सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट उसमें दिखाई गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पार्ट्स के नाम भी लिखे हुए हैं। तो लेकिन क्योंकि हम जनन की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ उसके रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है उनके बारे में बात करेंगे। तो जो पुंकेसर हैं जो कि पराग बनाते हैं, वो पौधे का जो है मेल पार्ट है। और पराग कणों में क्या होता है, मेल गैमीट होते हैं। एक फूल में कई पुंकेसर हो सकते हैं, ये तो है। प्रत्येक पुंकेसर के दो भाग होते हैं, यानी ऊपरी भाग तो एंथर कहलाता है, जिसके अंदर पराग कण भरे होते हैं। कभी आपने देखा होगा, अगर फ्लावर को लेंगे तो आपको एक डस्ट जैसा कुछ उसमें बिंदु दिखाई देंगे, वो क्या होते हैं, वो पराग कण होते हैं। और जो निचला भाग होता है वो होता है फिलामेंट यानी पुतंतु के ऊपर वो स्थित होते हैं। आपने देखा होगा एक लंबी सी डंडी जैसा होता है, पतली सी डंडी, और उसके ऊपर एक छोटा सा टिप जैसा बिंदु दिखाई देगा, वो उसी के अंदर पराग कण होते हैं। और दूसरे जो, ये तो मेल ऑर्गन की बात की हमने, फिर दूसरा जो होता है वो स्त्री केसर या जायांग मादा भाग होता है। और इसके जो हैं एंड्रोशियम गाइनेशियम के तीन भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और जो अधिकतर जो पौधे हैं उनमें मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों अलग अलग होते हैं। अगर दोनों अलग हैं तो उन्हें हम कहते हैं उभयलिंगी यानी बाइसेक्सुअल। और कुछ में, कुछ पौधों में क्या होता है, नर पुष्प होते हैं जिनमें केवल पुंकेसर होते हैं, और कुछ पौधों में केवल मादा पुष्प होते हैं तो जिनमें केवल स्त्री केसर होते हैं। तो ऐसे पौधे जिनमें अलग अलग होते हैं, सेम में हैं तो बाइसेक्सुअल हो गया, और अगर वो एक अलग अलग हैं तो हम कहते हैं उनको यूनिसेक्सुअल। अब हम बात करते हैं पॉलिनेशन की और फर्टिलाइजेशन की। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन कैसे करते हैं कि जो केंद्रकों में, जो न्यूक्लियस में संलग्न होने वाले पराग कण हैं और अंड हैं, वो अनेक कई दूसरे तरीके से, दूसरे माध्यम से, वायु, जल और कीट के द्वारा एक दूसरे के पास आ जाते हैं। और पराग कोष से निकल कर जो पराग कण हैं वो का जो पुष्प है के वर्तिकाग्र पर पहुंचने को हम पॉलिनेशन या परागण कहते हैं। यानी पराग कोष से निकला जो पराग कण है वो पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचा, उस प्रक्रिया को हमने परागण कहा है। और ये दो तरह से हो सकता है, एक तो स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन, जिसमें क्या होता है कि जब किसी फूल के जो पराग कण हैं उसी के फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचे यानी और अंडे को निषेचित करते हैं, तो ये कहलाता है स्वपरागण। लेकिन हमने बात की कि दो तरह के होते हैं, तो परपरागण में क्या होता है कि जो परपरागण है उसमें एक फूल के जो पराग कण हैं वो अपनी ही स्पीशीज के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और उस फूल के अंड को निषेचित करते हैं। और इसमें कई माध्यम हो सकते हैं, कैसे, या तो वायु, जल, कीट, एनिमल के थ्रू, ये जो ये कारक हैं, फैक्टर हैं जिनके थ्रू पराग कणों को एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचाने में ये सहायक होते हैं, इसीलिए इसे परागण कहते हैं। अब पराग कण और अंडे के केंद्रकों में जो है फर्टिलाइजेशन होता है अथवा सेलिनेशन जुड़ मिल जाते हैं के लिए जो पराग कण हैं उसमें से जैसे कोई भी कारक, जैसे हमने बात की वायु हो सकता है, वाटर हो सकता है, आपका कीट हो सकता है या कोई तो ये क्या करते हैं, एक जो परागण जब होता है तो ये हमने बात की कि वो परागण जो है एक पर से दूसरी जगह पे जाते हैं, तो ये कोई भी एक कारक के द्वारा जो है जायांग के वर्तिकाग्र पर, गाइनेशियम के जो वर्तिकाग्र वाला पोर्शन है उस पर स्टिक पहुंच जाते हैं। और प्रत्येक पराग कण जो है एक पराग नलिका बनाता है, और ये जो पराग नलिका है वो वर्तिका के अंदर नीचे बढ़ती जाती है, के भीतर बढ़ती है, और जो पराग कण का जो न्यूक्लियस है वो बीजांड तक नहीं पहुंच जाता है, जब बीजांड तक पहुंच जाता है तो ये निषेचित हो जाता है और निषेचित बीजांड बीजों में परिवर्तित हो जाते हैं, और इस तरह से जो प्लांटलेट के रूप में अंकुरित होकर नए बीज से क्या होता है, नए पौधे बनते हैं। तो ये जो बीज हैं जो अंकुरित होकर नए पौधों को जन्म देने में सक्षम हो जाते हैं, और ये दो तरह का हो सकता है। इसके दो एग्जाम्पल आपको दिए हैं, एक तो चने का दिया है, मक्के का दिया है, और दूसरा चने का दिया है। चने का दो बीज पत्री हो गया और मक्के का जो है वो एक बीज पत्री है। इसको आप अपने चित्र जो है हमारा ये है 24.11 उसमें आप देख सकते हैं। जब एक बार बीज बन जाते हैं तो वो फिर प्रकीर्णित होते हैं या फिर अपने पेरेंट पौधे से, जनक पौधे से दूर हो जाते हैं, और फिर जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो वे पुनः अंकुरित हो जाते हैं और जहां पर ये गिरते हैं वहां पर ये एक नया पौधा बना देते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने बात की पौधों के बारे में, अब हम बात करते हैं कि जंतुओं में जो है लैंगिक जनन किस तरह से होता है। कि जो लोअर एनिमल्स हैं, जैसे हमने हाइड्रा की बात की, स्पंज की बात की, कि उनमें एसेक्सुअल तरीके से जनन हो जाता है, कर सकते हैं, लेकिन उनमें सेक्सुअल भी होता है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी होता है। और जैसे उनको छोड़ दें, बाकी सभी जो जंतु हैं उनमें क्या होता है कि मादा के अंड यानी अंडाणु और नर का जो स्पर्म है यानी शुक्राणुओं का सलन जब होता है, लयन होता है, और उसी जब फर्टिलाइज निषेचन होता है, और उसके बाद ही एक जायगोट यानी युग्मक बनता है, और जो कि भ्रूण के रूप में एक पूर्ण विकसित संतति बन जाता है, यानी अंडे के भीतर विकास आंशिक या पूरा हो सकता है। और ऐसे जंतु भी होते हैं जो अंडे देते हैं, जैसे मछली हो गए, मेंढक हो गए, रेप्टाइल जितने भी हैं वो, और पक्षी हो गए, वो सब अंडे देते हैं, इसीलिए उनको अंडज या ओविपेरस कहते हैं। लेकिन जो मैमल्स हैं जैसे बिल्ली है, गाय है, कुत्ता है, और भी जितने मैमल्स हैं, बंदर हो गया, मनुष्य भी उसमें शामिल है, उसमें जो भ्रूण बच्चा जो है वो माँ के गर्भ में विकसित होता है, इसीलिए उन्हें जरायुज या विविपेरस कहते हैं, यानी ओविपेरस यानी अंडे देने वाले, विविपेरस यानी बच्चे देने वाले। अगर हम बात करें टेप वॉर्म की या अर्थ वॉर्म की, तो इसमें क्या होता है, नर और मादा जो होते हैं वो दोनों में, दोनों ही जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो एक ही जीव में मिल जाते हैं, दोनों एक ही, दोनों के जनन अंग नर और मादा एक ही जीव में मिलते हैं, तो उसे हम कहते हैं उभयलिंगी यानी हर्माफ्रोडाइट। इसके अलावा जो दूसरे जंतु हैं उनमें जो है अलग अलग जीव में होते हैं, यानी मेल और फीमेल होते हैं, और मेल में क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जैसे टेस्टिस, और फीमेल में होता है आपका ओवरी यानी अंडाशय। तो मानव भी क्योंकि एनिमल किंगडम को बिलोंग करता है, मैमोलिया ग्रुप में है, तो मानव क्या हुआ, मानव भी स्तनधारी होने के कारण ये भी मानव भी आपका जरायुज या विविपेरस होता है। अब हम मनुष्य में जनन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, तो आपके चित्र में एक चित्र बना हुआ है, आप उसमें देखिए, उसमें ना मानव जीवन की विभिन्न अवस्थाएं दिखाई गई हैं, यानी शैशव अवस्था से लेकर मैच्योर अवस्था तक के बीच, और बाल्यावस्था से अगर हम देखें तो युवावस्था, यानी इस तस्वीर में आप देखो कि शैशवावस्था यानी टोडलर की भी है, बाल्यावस्था का भी है, किशोरावस्था भी है, युवावस्था भी है, और अंततः वृद्धावस्था भी दिखाई गई है। तो आप ये सोच देख सकते हो कि आप इस समय किस फेज में हो और आपने लाइफ के कितने फेजेस यानी चक्र को देख लिया है। अब हम बात करते हैं मानव में जो एडोलेसेंस का स्टेज है, यानी हमने तस्वीर के बारे में बात किया, आप उसमें सोचिए, आप उसको सर्कल भी कर सकते हैं कि आप इस समय किस फेज में हैं, और उस तरह उसी तरह से आप अपने नामांकन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, यानी कि जब कोई जीवन की पर रिप्रोडक्टिव एज यानी यौवन यानी लैंगिक परिपक्वता अवस्था में आता है, परिपक्व अवस्था में आता है, और उस समय क्या होता है, शरीर में बहुत सारे हमारे चेंजेस, यानी छोटा बच्चा होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर 10-11 साल का जब बच्चा होता है उस समय से आप चेंजेस देखना शुरू किए, और ये जो चेंजेस हैं, ये परिवर्तन की जो बात कर रहे हैं हम, यौवनावस्था की, एडोलेसेंस की जो बात कर रहे हैं, वो यही है कि ये जो परिवर्तन हमारे शरीर में इस समय काफ़ी तरह के नेचुरल चेंजेस होते हैं, और ये जो परिवर्तन शुरू होते हैं 10 से 11 साल की आयु में आरंभ होते हैं, और लगभग 18 से 19 साल तक ये आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। यानी इस ये जो 10-11 साल से लेकर 18-19 साल की जो अवस्था है, उसी को हम जीवन की ये अवस्था है उसे हम कहते हैं किशोरावस्था, यानी एडोलेसेंस। और मनुष्य में ये जो है वो परिवर्तन का ये जो काल है वो उसे प्रजनन के योग्य यानी संतानोत्पत्ति के योग्य बनाता है, और इसी को आयु को हम कहते हैं प्यूबर्टी या यौवनारंभ आयु। ये सिर्फ मनुष्य में नहीं है बल्कि अन्य जीवों को भी आप देखें तो उनमें भी अगर कुत्ते ने बच्चा पैदा दिया तो वो बच्चा एकदम से ही नहीं वो नया जीव पैदा कर लेगा, उनमें भी ये अच्छा शुरू एकदम से नहीं होते, लेकिन थोड़े समय के बाद ही वो परिपक्व जब हो जाता है, यानी उसमें उसे भी उसमें जब कुछ एक छोटा सा पप्पी है वो भी मैच्योर डॉग जब होता है तभी वो प्रजनन कर सकता है या अपने जैसी संतति पैदा कर सकता है, यानी उसे भी पहले परिपक्व होना पड़ता है और व्यस्क होना पड़ता है। और जो दूसरे एनिमल्स हैं उनमें क्या होता है कि ना जो जन्म और मैच्योरिटी की जो टाइम है वो बहुत कम होता है, लेकिन मनुष्यों में ये सबसे लंबी अवधि होती है, यानी पैदा होने के 19 साल तक आप में ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब एक नीचे आपको टेबल नंबर 24.2 है जिसमें कि दिखाया गया है आपका प्यूबर्टी एज को दिखाया है, और ये जो परिवर्तन है वो किशोरावस्था में आपके शारीरिक हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल यानी कार्य की हो सकते हैं, और साइकोलॉजिकल भी चेंजेस होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल चेंजेस के बारे में। तो फिजिकल चेंजेस में कद में वृद्धि होती है, इस सब दूसरा शरीर के आकार में परिवर्तन होता है, आवाज़ में चेंज आता है, और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनका विकास होता है, जननांगों का विकास होता है, और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का सेकेंडरी जो सेक्सुअल करैक्टर हैं उनका भी इस समय अपीयरेंस यानी वो समय दिखाई पड़ने लगते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कद में वृद्धि कैसे होती है। इस समय एज में क्या होता है कि हमारी हड्डियाँ लंबी होती हैं, पेशियों का विकास होता है, और हमारी ऊंचाई जो है बढ़ती है। अब इसका रिमार्क हम कैसे देखते हैं कि ये जो है यौवनावस्था यानी जो हमारा इसमें जो परिवर्तन होते हैं उसमें ये सबसे प्रत्यक्ष दिखाई देता है, यानी बच्चे की हाइट बढ़ती है, और जब हाइट बढ़ती है तो ये हाइट का रिलेशन हो सकता है आपका आपके जीन की स्थिति पर, आपके पोषण पर, और आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या हैं उसके स्तर पर भी निर्भर करता है, क्योंकि कुछ बच्चे जो लंबे हो जाते हैं कुछ उतने लंबाई नहीं बढ़ती है, नाटे कद के भी होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे शरीर के आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो जो लड़के हैं उनके जो छाती और कंधे हैं वो चौड़े हो जाते हैं, जबकि लड़कियों में क्या होता है कमर के नीचे जो कूल्हे हैं, कमर के नीचे का कूल्हे यानी उसके आसपास जो है वसा का डिपोजिशन यानी जमाव होना शुरू हो जाता है। यानी इसका रिमार्क क्या रहा, निरूपण क्या रहा कि सही वृद्धि के लिए उचित पोषण बहुत आवश्यक है। जैसे हमने हाइट के लिए बात की तो युवाओं को एक संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, और इसमें ऐसे भोज्य पदार्थ जो कि हमें एनर्जी देने वाले हों जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट जो वृद्धि में सहायक हों जैसे प्रोटीन, और कुछ इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता और बढ़ाकर संक्रमित रोगों से बचाव के लिए हमें विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है, यानी हमें बैलेंस भोजन करना ज़रूरी होता है। और ये आप चूज़ कर सकते हैं कि आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन, शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं, और उसी के आधार पर आप चुन सकते हैं कौन कौन से, क्योंकि आपको बैलेंस भोजन के न्यूट्रिशन की जब बात की थी तो उसमें हमने बैलेंस डाइट के बारे में बात किया था और बताया था कि कौन से में क्या क्या मिलता है। तो आप चुन सकते हैं अनाज हो गया, आप चुन सकते हैं फल और सब्जी चुन सकते हैं, और दूध और मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को बात कर सकते हैं आप। मीट में अगर मांस मछली अंडा खाने वाले हैं तो आप उसको चूज कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपनी डाइट को, क्योंकि शरीर की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है इसलिए आपको डाइट का चेंज करना ज़रूरी है। पर ना इनको रिप्लेस ना करें, बैलेंस डाइट का जो भी कंपोनेंट है वो रहे। ये नहीं कि आपने चिप्स खा लिया या चॉकलेट खा लिया या पेस्ट्री खा लिया बर्गर खा लिया, वो भोजन के रूप में नहीं आ सकते हैं और ना ही इनकी रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको ये आदत नहीं होना चाहिए, कभी कभी चलेगा लेकिन हर समय आप यही खाना खाते रहें, बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तब भी आपकी जो शरीर के आकार में परिवर्तन है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ता है। और इसके साथ बैलेंस डाइट के साथ में आपको फिजिकल एक्सरसाइज की भी ज़रूरत होती है। आप फिजिकल एक्सरसाइज भी करें तो आपकी सही शारीरिक वृद्धि होगी। अच्छा, हमने बात की कि आवाज़ में परिवर्तन होता है तो खास तौर से लड़कों की जो लैरिंग्स या है या जो वॉइस बॉक्स है वो बड़ा हो जाता है और एडम्स एप्पल के रूप में दिखाई देने लगता है। तो लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है कि और जब क्योंकि लैरिंग का आकार बढ़ रहा होता है और कभी कभी उनकी आवाज़ फटी फटी सी भी लगती है और उस समय आवाज़ पर नियंत्रण भी नहीं रहता है, और लड़कियों के केस में उनकी जो आवाज़ है वो पतली और तीखी हो जाती है। तो ये आवाज़ में परिवर्तन भी होता है जब हम 10 to 19 की स्टेज में होते हैं। और हमने बात की थी कि जननांगों का विकास भी होता है क्योंकि यौवन अवस्था में ही जब होते हैं, एडोलेसेंट एज में जब होते हैं, तब हमारे में जो मेल और फीमेल दोनों में ही जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं। और जननांगों की रचना और कार्यों का जो है ना, इसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे उसमें क्या है आप कैसे है, और जो सेकेंडरी करेक्टर्स दिखाई दे, सेक्सुअल करेक्टर्स जिससे होते हैं इसमें, जैसे बगल और जग के क्षेत्र में जो बाल आ जाते हैं, लड़कियों में स्तन का विकास हो जाता है और लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूछ आ जाती है। अब ये इसका रिमार्क क्या है कि लड़के और लड़कियां इस एज में जब पहुँचते 10 to 19 के उसमें जब आते हैं तो प्रजनन के योग्य हो जाते हैं। उचित स्वच्छता बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, और लड़कियों के जो वह जननांग हैं तथा लड़कों के वृषण का जो को शरीर के सभी अंगों के साथ धोना, मतलब उसकी साफ सफाई ज़रूरी है। और युवाओं में यौन उत्तेजना और हस्तमैथुन प्राकृतिक होता है, और जब कोई लड़का सपने में ही इस तरह से वो करता है तो उसको हम स्वप्न दोष कहते हैं और ये नेचुरल है। और लड़कियों में आपके ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है और ये आपका एडोलेसेंस स्टेज का फर्स्ट एक साइन कह सकते हैं, संकेत है। और स्तनों के आकार व आकृति में अंतर होना प्राकृतिक है, और ये भी फैट डिपॉजिशन कितना है उसके इस पर निर्भर करता है। और इसका मिल्किंग और दुग्ध उत्पादन या यौन अंग से कोई संबंध नहीं है। तो एक क्या आपको पता है कि ना कई बार स्त्रियों के स्तन में ब्रेस्ट में कोई परिवर्तन दिखता है, यानी कि कोई पिंड स्तन के रूप में कुछ अंतर या श्राव हो या आसपास की त्वचा में गड्ढे या खोखलापन हो तो उसे तत्काल ही किसी स्वास्थ्य कर्मचारी या चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए, क्योंकि कई बार ये ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण भी हो सकते हैं। तो हमने आज बात की कि जनन क्या है, अलैंगिक जनन की बात की, पौधों में लैंगिक जनन की बात की, और हमने बात की जंतुओं में लैंगिक जनन की और मनुष्यों में जनन के बारे में। तो अब हम अगली चर्चा में आपसे फिर बात करेंगे इसके पार्ट टू के बारे में, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में और वो किस तरह से मैच्योर होते हैं और किस तरह से एक बेबून तैयार होता है।
जी, तो मैम यहाँ पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे से हमें रिप्रोडक्शन बायोलॉजी में बताया, जनन के बारे में बताया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।